दानियल अध्याय दूसरा नबूकदनेस्सर का ख्वाब। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनांचे वह आए और बादशाह के सामने खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफत करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कस्तियों ने बादशाह के सामने आरामी जबान में अर्ज किया कि ऐ बादशाह, हमेशा तक जीता रहे, अपने खादिमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कस्तियों को जवाब दिया, मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबले हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और बदला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे, इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज किया कि बादशाह अपने खादिमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया कि मैं खूब जानता हूं कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूं। लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और बहाने की बातें बनाई ताकि मेरे सामने बयान करो कि वक्त टल जाए। इसलिए ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी बयान कर सकते हो। कसदियों ने बादशाह से अर्ज किया कि इस जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कसदी से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता है निहायत मुश्किल है, और माबूदों के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के सामने कोई उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त गुस्सा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबुल के तमाम हकीमों को हलाक करें। तब ये हुक्म जगह जगह पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल और उसके साथियों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। तब दानियल ने बादशाह के जिलोदारों के सरदार अर्युक को, जो बाबुल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, ख्यारमंदी और अक्ल से जवाब दिया। उसने बादशाह के जिलोदारों के सरदार अर्युक से पूछा, बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया? तब अर्युक ने दानियल से इसकी हकीकत बताई, और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज किया कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के सामने ताबीर बयान करूंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर हनन्या और मिसाइल और अजरिया अपने साथियों को खबर दी, ताकि वह इस राज के बारे में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके साथी बाबुल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वह राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियल ने कहा, खुदा का नाम हमेशा तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और अक्लमंदों को इल्म इनायत करता है, वही गहरी और छुपी चीजों को जाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी इबादत करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मुआमिला हम पर जाहिर किया है। तब दानियल अर्युक के पास गया, जो बादशाह की तरफ से बाबुल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबुल के हकीमों को हलाक न कर, मुझे बादशाह के सामने ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बता दूंगा। तब अर्युक दानियल को जल्दी से बादशाह के सामने ले गया और अर्ज किया कि मुझे यहूदा के गुलामों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से, जिसका लकव बेल्तशज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के सामने अर्ज किया कि वह राज जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें जाहिर करता है, और उसने नबूकदनज्जर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी दिनों में क्या होने को आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ऐ बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। तब वह जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर जाहिर होने की वजह ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि यह कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के ख्यालात को पहचाने। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। वह बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई, और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सिर खाली सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया, और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए, और ताबिस्तान खलिहान के भूसे की तरह हुए, और हवा उनको उड़ा ले गई यहां तक कि उनका पता ना मिला। और वह पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और सारी जमीन में फैल गया। वह ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के सामने बयान करता हूं। ऐ बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और जहां कहीं बनी आदम रहा करते हैं उसने मैदान के जानवर और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सबका हाकिम बनाया है। वह सोने का सिर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत खड़ी होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो पूरी जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वह टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इसलिए उस सल्तनत में फूट होगी। मगर जैसा तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी, और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ मजबूत और कुछ कमजोर होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वह बनी आदम से मिले हुए होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी आपस में मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के दिनों में आसमान का खुदा एक सल्तनत खड़ा करेगा जो हमेशा बर्बाद ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वह इन तमाम हुकूमतों को टुकड़े टुकड़े और बर्बाद करेगी, और वही हमेशा तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वह पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया, खुदा ताला ने बादशाह को वह कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और उसकी ताबीर यकीनी। तब नबूकदनज्जर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने खुशबू जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, हकीकत में तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदाबंद और राजों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसको बाबुल के तमाम सूबों पर इख्तियार दिया और बाबुल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी इनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की, और उसने सदरक मीसक और अबदनजु को बाबुल के सूबे की जिम्मेदारी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा।